और मूर्ख की नहीं चेष्टा करते हैं, दुख पाते हैं, जिंदगी भर मजदूरी करते हैं, फिर शरीर को जला देते हैं, लेकिन कर्मों के ऐसे संस्कार लेके जाते हैं कि कई जन्म उनको भोगने पड़ते हैं। जैसे उन्मत्त आदमी हो ना, जाके कीचड़ में गिरे, ऐसे ही मूर्ख लोग, अज्ञानी लोग आत्मज्ञान रहित जीवन बिताकर जन्म मरण के कीचड़ में जाके गिरते हैं। लेकिन जो विचारवान है, अविचार से ये देह मैं भासता है, अविचार से संसार सच्चा भासता है, अविचार से जो दुखद परिस्थितियां हैं उसमें सुख भासता है, लेकिन विचार आत्मविचार करने से जो सुख स्वरूप आत्मा है उसमें जीव जग जाता है, और जो दुख रूप विषय थे, दुख रूप परिस्थितियां थी, दुख रूप मान्यता थी, उसको वो छोड़ देता है। ज्ञानवान को सशरीर होते हुए भी दुख स्पर्श नहीं करता। उसका मतलब ये नहीं कि ज्ञानवान महापुरुषों के शरीर को दुख पीड़ा नहीं आते हैं, आते हैं। रमण महर्षि, रामकृष्ण देव और भी बड़े बड़े महापुरुष हो गए तो शरीर की पीड़ा, दुख, धन हानि, लाभ, पुत्र प्राप्ति या मरण, ये हो जाता है ज्ञानियों के भी। कई ज्ञानवान है जिनके पुत्र मर गए, वशिष्ठ जी के पुत्र मर गए, वशिष्ठ के होते शिवजी, श्री कृष्ण का कुल शिवजी कृष्ण के होते हुए युद्ध करके विनाश को प्राप्त हुआ, लेकिन उन महापुरुषों को जो अपने स्वरूप में जगे उनको खेद नहीं होता है। उनको उनका विचार परम रक्षक होता है, विचार करके जगत को निहारते हैं कि सब लीला मात्र है, विनोद मात्र है, स्वप्न मात्र है, अथवा तो भ्रम मात्र है। लेकिन इस भ्रम और स्वप्न मात्र जो संसार को जिस सत्ता से निहारा जा रहा है, उस सत्ता स्वरूप परमात्मा में वे महापुरुष लोग जग जाते हैं। इसलिए वे सशरीर होते हुए भी उन्हें दुख स्पर्श नहीं करता, क्योंकि वे जुड़ते नहीं शरीर के साथ। जैसे आप अपनी परछाई से नहीं जुड़ते, परछाई से परे हैं, जैसे आपकी परछाई आप नहीं है, ऐसे ये शरीर आप नहीं है, ऐसा उन महापुरुषों को बोध होता है। तो शरीर से, मन से, इंद्रियों से वे अपने पृथक चिदघन चैतन्य स्वरूप में स्थित होते हैं। इसलिए वे सशरीर होते हुए भी, सकर्म होते हुए भी, सप्रवृत्ति होते हुए भी अकर्ता है, अशरीर है। ऐसे ज्ञानवान महापुरुष वास्तविक में उन्हीं का जीवन है, और मनुष्य जन्म की बुद्धि मिली है उस आत्मज्ञान को पाने के लिए। लोग बुद्धि को विषय भोग इकट्ठे करने में, वस्तुएं एकत्रित करने में बुद्धि का नाश कर देते हैं। वो बेटों के लिए, परिवार के लिए ढगले करके जाना चाहते हैं, लेकिन जो धन यथार्थ धन नहीं है वो बेटों की बुद्धि भी ठीक नहीं करेगा। जो अशुद्ध धन है उससे अशुद्ध अन्न आता है, अशुद्ध अन्न से बुद्धि अशुद्ध होती है बेटों की। अब चाहते हैं हम बेटों को सुखी कर दें, लेकिन बेटों की आदत और स्वभाव ऐसा हो जाता है कि दुखी दुखी रहेंगे, लेकिन हम बेटों को या अपने को सुखी करना चाहें तो नीति का अन्न खाएं, नीति का व्यवहार करें और समय बचावें। समय बचाकर आत्म पद में लगा रहे हैं तो हमारा तो उद्धार हो जाएगा, बेटों का उद्धार हो जाएगा, लेकिन बेटों के चरणों में जो प्रणाम करेगा उसका भी कल्याण हो जाएगा, ऐसा हो जाता है। किए हुए शुभ कर्म देर सबेर फलते हैं, किए हुए अशुभ कर्म कोई न देखे फिर भी अंतर्यामी जो है ना उसकी बड़ी अद्भुत कंप्यूटर सिस्टम है, आध्यात्मिक कंप्यूटर, भौतिक कंप्यूटरों से, ऑटोमेटिक कंप्यूटरों से लाखों गुना सूक्ष्म है। वो आत्मविचार उन्हीं लोगों को भाता है जिनका अंतःकरण शुद्ध होता है, जिनका अन्न और मन शुद्ध होता है। आत्मविचार करने से उनकी अविद्या दूर हो जाती है। जैसे सूर्य को बादलों ने ढक दिया तो सूरज दिखाई नहीं पड़ता, ऐसे इस विषय इच्छा ने ना समझी ने अविद्या मना ना समझी, इस ना समझी ने आत्मरूपी सूर्य को ढक दिया। अब ये ना समझी जाएगी आत्मज्ञान के समझ से, लेकिन आत्मज्ञान पाने की तीव्र रुचि अभागे आदमी को होती नहीं। आत्म साक्षात्कार करने की तीव्र रुचि अभागे आदमी की होती नहीं। अति अति जिसके शुभ कर्म होते हैं अति भाग्यवान होता है, उसको आत्मज्ञान के सिवा और कोई सार नहीं दिखता है, उसको परमात्मा साक्षात्कार के सिवा और कोई सार नहीं दिखता। लेकिन जो मूढ़ लोग हैं वो असार संसार में अपनी जिंदगी दफा कफा कर देते हैं, अंत में पछताते हैं, मरते हैं, कोई उनका साथ चलता नहीं, उनका बाप साथ में, और चलते हैं तो कर्म साथ में चलते हैं, संस्कार साथ में चलते हैं, रुपए पैसे धन मकान बनाने में जो कूड़ कपट किए, जो धोखेधड़ी किए, वो संस्कार चित्त में अंकित हो जाते हैं, वो संस्कार चलते हैं। फिर ऐसे ही कपटी जीवन जिए हैं तो फिर और कपटी शरीर मिलेगा, बिल्ली कपट करके छुप जाती है, बगुला कपट करके छुप जाता है, आंख बंद कर देता है। तो जैसा जैसा हमने जीवन भर किया है, जैसे आदत पड़ गई है, धोखा किया है, छल किया है, कपट किया है, तो कपटी शरीर रखें और गुजारा हो ऐसे शरीर मिलेंगे, बिल्ली है बगुला है। समझो हम काम विकार से जिए हैं तो सुकर है, बकरा है, कबूतर है, ऐसा शरीर मिलता है। जैसे संस्कार दृढ़ हो जाते हैं उसी के अनुरूपी कंप्यूटराइज है, आध्यात्मिक कंप्यूटराइज। तो जैसे जैसे संस्कार होते हैं ना, जैसे अभी यहाँ हम लोगों के अच्छे संस्कार हैं तो ब्रह्म विद्या आत्मज्ञान की जगह पर पहुंच गए, शराबी के संस्कार हैं तो शराब अड्डे पे पहुंच जाता है। ऐसे ही जैसे संस्कार होते हैं मरने के बाद भी ऐसा ही फिर शरीर मिलता है, फिर उस शरीरों की कोई गिनती नहीं है, फिर चले चलो 84 लाख बार माताओं के गर्भ में लटको। मेरे को बोलते हैं बाबा जी फलाने आदमी बोलते हैं कि तुम शादी कर लो, मेरी इच्छा नहीं है, मेरी इच्छा भगवान को पाने की है। तो फिर उसकी भगवान को पाने की इच्छा के आगे विरोधी इच्छा कोई भी कह दे, चाहे गुरु कह दे, चाहे बाप कह दे, चाहे माँ कह दे, चाहे पत्नी कह दे, चाहे पति कह दे, ईश्वर प्राप्ति में अड़चन आने वाला काम की बात, ईश्वर प्राप्ति में अड़चन आने वाला जो भी सलाह है वो चाहे कोई भी कह दे, उस सलाह को ठोकर मार देना चाहिए। तजिए कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेह, चाहे गुरु भी कह दे हम ईश्वर प्राप्ति करना चाहते हैं और गुरु ऐसा मार्ग दिखाते हैं कि हम ईश्वर से दूर हो जाए, तो वो गुरु गुरु नहीं है, वो शत्रु है, उसको छोड़ दे, उसकी बात को ठोकर मार दे। माँ है, और बात में तो माँ की आज्ञा ठीक है, लेकिन ईश्वर प्राप्ति में माँ अगर अड़चन आती है, माँ की बात को ठोकर मार, बेटी की बात को ठोकर मार, बाप की बात को ठोकर मार, मित्र सखा की बात को ठोकर मार। जो ब्रह्मनिष्ठ गुरु हैं, आत्मवेता, वे महापुरुष वास्तव में हमारे परम हितेशी हैं, वास्तव में वे गुरु हैं। फिर वो मौनी हो चाहे वाग्मी हो, प्रवृत्ति मार्ग वाले हो निवृत्ति मार्ग वाले हो, लेकिन जो आत्मानुभवी भव से संपन्न है, आत्मवेता महापुरुष, वे वास्तविक में गुरु हैं। जो मंत्र तंत्र त्राटक माटक सब तुच्छ बात है, ये निषिद्ध गुरु। त्राटक करके किसी को चुमंत्र कर देना है, आत्मवेता गुरु की बात अलग है। ये सब निषिद्ध गुरु, निषिद्ध गुरु के चक्कर में आने वाला निषिद्ध चेला बड़ा दुखी रहता है, लेकिन आत्मज्ञानी महापुरुषों के पास जाते तो हमारी अविद्या दूर होती है। अविद्या दूर होते ही अविद्या अस्मिता राग और द्वेष उसके बाल बच्चे हैं, जैसे थर कटते ही डालियां और पत्ते फूल और टहनियां सूख जाती हैं, ऐसे ही अविद्या दूर होते ही राग द्वेष क्षीण हो जाता है। अविद्या अविद्या की औलाद है अस्मिता राग और द्वेष, अभिनिवेश जीने की इच्छा, और राग द्वेष। तो देह को कितना भी जिलाने की इच्छा करो, देह तो जब मरने वाला होगा मरेगा, हमारी तो मौत होती नहीं। अब जो मरने वाला है उसके लिए दिन रात मजूरी करते हैं, दौड़ा दौड़ दुकानें जो उसे मैदा खरीदना है, बेसन खरीदना है, एक नंबर का पैसा बनाना है, तो 10 नंबर के बना, आखिर मसान में जाना, ये याद रखो। मसान में गए तो जिसको पत्नी मान रहे हो, पुत्र मान रहे हो, ये मित्र मान रहे हो, ये तो बड़े वैरी हैं। जिनको मित्र मान रहे हैं ये तो बड़े वैरी हैं, परमार्थ से गिराने वाले हैं। उन्हीं का चिंतन करोगे उन्हीं के जीवन में तो अविद्या बढ़ जाएगी, लेकिन वो मित्र और पुत्र और परिवार और पत्नी और पति, उसके अंदर छुपा हुआ जो परमात्मा है वही तो तुम्हारा आत्मा है। ओ मित्र से पत्नी से पुत्र से व्यवहार तो रखो, लेकिन अंदर में देखो कि सब दिखने भर के बुलबुले हैं, बुलबुले हैं दिखने भर के, कोई हमारा मित्र नहीं। मरने वाले कब तक मित्र बने, लेकिन मरने वालों के अंदर जो अमर आत्मा है वही हमारा मित्र है। तो उन मित्रों की सच्ची मित्रता तुम्हारी है, उन मित्रों का भी तुम्हारे द्वारा कल्याण होगा। अगर मित्र में परमात्मा भाव करके वही परमात्मा मेरा आत्मा है ऐसे करके अपने आत्मा में आ जाते हो तो मित्रों का कल्याण होगा। अगर आत्मा का त्याग करके उन मित्रों की खुशामत में लगते, पत्नी के पोषण में लगते, पत्नी के गहने और कपड़ों की चिंता में लगते, या पति के हाड़ मास के देह में आसक्ति की दृष्टि से देखते लगते हैं, तो ये एक दूसरे के वैरी हैं, एक दूसरे के शत्रु, महाशत्रु। इससे तो मौत अच्छी, मौत तो एक बार मारती है, लेकिन एक दूसरे के शरीरों में प्रीति करके ईश्वर से विमुख होना तो 84 लाख जन्मों तक भटकता आदमी। संसार में तुम्हारा कोई मित्र नहीं है, सब बंधन बांधने वाले हैं, सब तुम्हारा को पीसने वाले हैं, पीड़ने वाले हैं। अरे तुम्हारा मन भी तुम्हारे को पीसता है बाबा, औरों की क्या बात करोगे। ओम 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 ओम। एक परमात्मा है सुहृदं सर्वभूतानां, ये मित्रों की कृपा से थोड़ी इधर पहुंचे हैं, मित्र तो बांध रखते थे। जो प्राणी मात्र का सुहृदय है वो परमात्मा की कृपा है कि हम लोग ध्यान भजन की जगह पे पहुंचते हैं, मौन रहने की रुचि होती है, ये उसकी कृपा है। जिनके लिए दिन भर कमाया, जिंदगी भर मजदूरी किया, वे लोग थोड़े चाहते हैं कि तुम साक्षात्कार कर लो, तुम हमारे चुंगल से निकल जाओ, ये थोड़े चाहते हैं। वे तो चाहते हैं कि हमारी आवश्यकताएं पूरी करो, तुम चाहे मरो चाहे जन्मो, चाहे माता के गर्भ में लटको। साहब हमारा मैनेजर बहुत अच्छा है। क्यों कैसे? क्या बहुत राजी रहता है? राजी उसलिए नहीं रहता कि तुम साक्षात्कार करोगे, राजी उसलिए रहता है कि तुम भटकते हो बाहर और सेल ज्यादा कर देते, उसलिए राजी रहते। मैनेजर राजी हो गया कोई बड़ी बात नहीं, नौकर राजी हो गया कोई बड़ी बात नहीं। उनका राजी पर कितने दिन तक? एक सबका आधार जो परमात्मा है उसको ठीक से पालो, उसको एक बार राजी कर लो, तो सारी दुनिया और 33 करोड़ देवता नाराज हो जाए तो भी आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं, और राजी हो जाए तभी भी आपके पास ऐसी चीज मिल होगी कि वो सब कुछ दे तभी भी कुछ आपके पास बढ़ोती नहीं। 33 करोड़ देवता और सारी मानव जाति राजी होकर सब कुछ दे दे तभी भी आपके पास ऐसा खजाना होगा कि उसके आगे सब कुछ लगे। आत्मविद्या ही विद्या, सविद्या या विमुक्त है। अज्ञानी लोग अविद्या में मर जाते हैं। अगर प्रयत्न करें तो आत्मविद्या तो मुफ्त में मिलती है, सस्ते में स्वाभाविक मिलती। आत्मविद्या का सुख तो सब दुखों को मिटा के अपने कुटुंब का उद्धार कर देता है, और अविद्या का जो सुख है वो सुख तो नहीं है, दुख का रूपांतर है। वो तो अपने को बर्बाद करता है, कुटुंब को भी बर्बाद कर देता है। जनक को आके वजीरों ने कहा, नौकरों ने कहा कि राज्य में आग लगी है, चलो जरा संभाल ले। तो बोले वो जो एक दिन तो छूट ही जाएगा, एक दिन तो लग ही जाएगी आग, उसको आग लगे तो लगने दो, मुझे जहां बुझाना है मैं बुझा रहा हूं। दूसरे लोग तो भागे, किसी की लंगोटी जल जाएगी, किसी की झोंपड़ी जल जाएगी, ऐसा समझ के सत्संग छोड़कर ब्रह्म विद्या की कथा छोड़कर भागे। लेकिन राजा जनक ने कहा कि जो जलता है उसको जलने दो, राज्य जलता है, महल जलता है, उसको जल जाने दो, एक दिन गिरने वाला ही है, जलने वाला ही है। जो मैं बुझाना चाहता हूँ वो बुझा रहा हूँ। हृदय की अशांति बुझाने की जगह पर आया हूँ। हृदय की तपन, जो कई जन्मों तक तपन क्या है, सुख की इच्छा भी तपन है और दुख से दुखी होना भी तपन है। बाहर से सुख पाने की इच्छा भी एक ताप है, हृदय में ताप पैदा कर देती है। बाहर से सुख पाने की इच्छा भी एक ताप है और बाहर के दुख से डरने की इच्छा भी एक ताप है। बाहर के जगत को सत्य समझ न माना, ताप को आमंत्रण देना। जैसे कोई तिनके की भट्ठा जला दे और उसमें कूदे और कहे मुझे शांति चाहिए, शीतलता चाहिए, ऐसे ही है संसार। कूटनीति के बिना तो संसार का व्यवहार नहीं होता है। दिन में न जाने कितनी बार कपट करना पड़ता है, ग्राहक के साथ कैसा चेहरा बनाना पड़ता है, खरीद करने जाओ तो कैसा चेहरा बनाना पड़ता है, बात करते करते अंदर बात कुछ होती और बाहर अंदर कुछ सोचना पड़ता है, सोचते हैं। दत्तात्रेय समझाते हैं कूटनीति वाले संसार से बचने के लिए, बिना द्वैत के व्यवहार हो नहीं सकता, और द्वैत पक्का हो जाता है। अविद्या से द्वैत पक्का भासता है, सच्चा भासता है। है एक का एक, लेकिन अविद्या ऐसी प्रकार हो गई भिन्न 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 करके जीव का ऐसे संस्कार हो जाते, ऐसे कर्म हो जाते कि कहीं अंत नहीं आता। सारी जिंदगी मजदूरी कर देते हैं, फिर भी देखो तो जीवन ऐसे थोथला थोथला। वो वशिष्ठ महाराज फरमाते हैं कि राम जी जो
संकेत कर देता है ये सृष्टि कर्ता का नियम है तो हम इनकार भी क्यों करें यार। ठीक प्रश्न पूछ लिया है, पुराना शिष्य है आखिर। जय जय ओम 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 ओम। तो श्री कृष्ण बंसी बजाए जा रहे हैं, बंसी को बहुत प्यारी मानी गई है। श्री कृष्ण तुझसे इतना प्यार क्यों करते हैं? बोले मैं अंदर से खाली हूं, अंदर से पोली हूं, अंदर मेरा अहम महम सेठपणो भाईपणो है और मोटोपणो ये कुछ नहीं रहा। फिर छेद निकाले गए तब भी मैंने इनकार नहीं किया, मैंने खूब कष्ट सहे हैं और जो खूब कष्ट सहता है और धन्यवाद से जीता है उसके द्वारा भगवान की ओमकार की गुंजन गूंजती है और उसी वही मुरली भगवान के होठों तक पहुंचती है। जिसने जीवन में सत्य के लिए, परमात्मा के लिए, धर्म के लिए सहा है, अपनी वासना नहीं है, वासना से हृदय पोला कर दिया, खाली कर दिया, जो निर्वासनिक है उसके हृदय से परमात्मा के गीत निकलते हैं और वो गीत प्यारे होते हैं, वो प्यारा गीत सुनना चाहते हैं और भगवान उनको सुनाना चाहते हैं, उसलिए बंसी वहां जाती है, इसमें घाटा क्या है। जय जय। अब आ रही है विदाई की घड़ियां, विदाई समारंभ हर वक्त होता है, आप लोगों को कहते हैं संभल कर रहना, आगे बढ़ना। कहते कहते आपका दो चार पांच दिन का शिविर का सानिध्य, आश्रम का मनोरम्य वातावरण होता है, आपकी भी अपनी अनुभूतियां होती है। पांच दिन कैसे बीत गए, चार दिन कैसे बीत गए, आनंद के दिन जल्दी बीत जाते हैं। इस बार हम चाहेंगे कि हमें वो याद बनी रहे कि जैसे श्री कृष्ण काली नाग के सिर पर एक एक कदम नाचते रहे, उसका सिर मर्दन करते रहे, ऐसे ही तुम भी जो मंत्र मिला है, जो कीर्तन मिला है, जो सत्संग मिला है, उसकी मस्ती मस्ती में प्रसन्न होते होते अपनी अहंता ममता भरी अनेक प्रकार की काली नाग जैसी जो वासनाएं हैं उन वासनाओं को मर्दित करते रहना। ईश्वर ने चाहा तो 23 तारीख के बुधवार को भी मिलेंगे और इस बुधवार को भी मिलेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि आप और हम इस शरीर से जब हैं तो मिलते रहें तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आप ऐसी जगह पर पहुंचो कि आप हमसे बिछुड़ो नहीं और हम आपसे अलग न हो, ऐसी जगह पर भी आप बैठ, जैसे झील या सरोवर में लील होती है और दोनों हाथों से लील हटाकर आदमी पानी का स्वाद ले लेता है, अपनी प्यास बुझाता है, लेकिन ये लील हटाने का कोई कायमी तरीका नहीं है, फिर लील जम जाती है, फिर हटाता जाए फिर पीता जाए, फिर हटाता जाए फिर पीता जाए, बार बार हटाते 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 कुछ ऐसी घड़ियां आती है कि लील नहीं के बराबर हो जाती, जिसका यूज होता रहता है पानी का वहां लील नहीं जमती है। ऐसे ही आशाराम ये आशा करता है कि ईश्वर अमृत का सरोवर तुमको दिखा दिया, अब उसका तुम उपयोग करते रहना, उसका तुम यूज करते रहना, तुम वो पानी राम रस का रस पीते रहना, हरि रस का प्रसाद लेते रहना, ताकि अविद्या और कल्पनाओं की लील हट जाए और एक दिन बिना लील का वो सागर लहराए और वो तुम्हारा सागर और हमारा सागर एक ही है, ऐसा तुम्हें पता चल जाए, ये आशा आशाराम करता है। इन चार दिनों में, पांच दिनों की शिविर में कड़ाके की धूप, चैत्र का महीना, कोई पंखे नीचे जीते होंगे, कोई एयर कंडीशन के बीच जीते होंगे, कोई सुविधाओं में जीते होंगे, ऐसे छप्पड़ के नीचे हजारों की संख्या में न आपने गर्मी देखी, न आपने ताप देखी, न मान देखा, न अपमान देखा, न अनुकूलता देखी, न प्रतिकूलता देखी। जिस भगवान के नाते आप और हम एकत्रित हुए हैं, वो भगवान हमें ये भी सद्बुद्धि दे कि बार बार हम ऐसी आध्यात्मिक यात्रा करते करते